नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप अनुज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के लिए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का शुभारंभ किया। कहा, सरकार द्वारा शुरू की गई कई महिला केंद्रित योजनाओं और कार्यक्रमों से समाज के हर वर्ग को हुआ लाभ। भारतीय वायुसेना ने 6 दशकों तक राष्ट्र की सेवा करने के बाद MiG-21 विमान को विदाई दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध में विमान की भूमिका की सराहना की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में प्रतिष्ठित राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार प्रदान किए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, वे इसराइल को वेस्ट बैंक पर कब्जा नहीं करने देंगे। और एशिया कप क्रिकेट के सुपर फोर में अंतिम मैच में भारत का मुकाबला आज शाम श्रीलंका से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बिहार की मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का शुभारंभ किया। श्री मोदी ने बिहार की 75 लाख महिलाओं के बैंक खातों में 10-10 हजार रूपये हस्तांतरित किए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा है कि सरकार द्वारा शुरू की गई कई महिला केंद्रित योजनाओं और कार्यक्रमों से समाज के हर वर्ग को लाभ हुआ है। उन्होंने कहा है कि इस योजना का उद्देश्य स्वरोजगार और आजीविका के अवसरों के माध्यम से महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है।
जनधन योजना के तहत बहनों बेटियों के 30 करोड़ से ज्यादा खाते न खुलवाए होते, इन बैंक खातों को आपके मोबाइल और आधार से न जोड़ा होता, तो क्या आज इतने पैसे हम सीधे आपके बैंक खातों में भेज पाते? आज जो पैसे भेजे जा रहे हैं ना, पूरे 10 हजार रूपये आपके खाते में जमा होंगे, एक रूपया कोई मार नहीं सकता है।
प्रधानमंत्री ने कहा है कि केंद्र सरकार की मुद्रा योजना, ड्रोन दीदी अभियान, बीमा सखी अभियान और बैंक दीदी अभियान पूरे देश की महिलाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार के अवसर पैदा कर रही है। प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के लाभार्थियों से वर्चुअल माध्यम से बातचीत भी की। देश की 6 दशकों की सेवा के बाद भारतीय वायुसेना के दिग्गज लड़ाकू विमान MiG-21 को आज अंतिम विदाई दी गई। ये विदाई समारोह चंडीगढ़ एयरबेस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, वायुसेना प्रमुख एयर मार्शल एपी सिंह और अन्य गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में आयोजित किया गया। MiG-21 का संचालन एक औपचारिक फ्लाइज पास्ट के साथ संपन्न हुआ। एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने बादल 3 के नाम से स्क्वाड्रन की अंतिम उड़ान भरी है। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में MiG-21 की भूमिका की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे कई अवसर आए हैं जब MiG-21 ने अपनी निर्णायक क्षमता साबित की है।
MiG-21 अनेक वीरतापूर्ण कृत्यों का साक्षी रहा है। 1971 के वार से लेकर कारगिल के युद्ध तक, या फिर बालाकोट एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक, ऐसा कोई क्षण नहीं रहा जब MiG-21 ने हमारी आर्म फोर्सेस को जबरदस्त मजबूती न प्रदान की हो। हर बार MiG-21 ने तिरंगे का सम्मान बढ़ाया है।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र में प्रतिष्ठित राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार 2024 प्रदान किए। ये पुरस्कार भूविज्ञान के क्षेत्र में देश के सबसे पुराने और प्रतिष्ठित सम्मानों में से एक है। विजेताओं को बधाई देते हुए राष्ट्रपति ने कहा है कि ये पुरस्कार भूविज्ञान के क्षेत्र में उनकी प्रतिबद्धता, नवाचार और उत्कृष्टता को सम्मानित करने के लिए दिए जाते हैं। राष्ट्रपति ने यह भी कहा है कि भू पर्यावरणीय स्थिरता पर खनन के प्रभाव पर भी उन्हें ध्यान देने की आवश्यकता है। सेवा और सुशासन के मंत्र को अपनाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बदलाव और प्रगति लाने के लिए लगातार काम कर रही है। आज सेवा पर के विशेष श्रृंखला में हम आपको बताएंगे कि श्री मोदी ने कैसे भारत के बढ़ते ई गवर्नेंस इकोसिस्टम के माध्यम से शासन प्रणाली को एक सहज, पारदर्शी और समावेशी डिजिटल अनुभव में बदल दिया है। सार्वजनिक सेवाओं से लेकर वित्तीय सशक्तिकरण तक भारत का ई गवर्नेंस इकोसिस्टम नागरिकों का अनुभव बदल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण से प्रेरित होकर तकनीक शासन को अधिक सुलभ और समावेशी बना रही है। जैसा कि प्रधानमंत्री ने कहा था, ई गवर्नेंस आसान, प्रभावी, किफायती और पर्यावरण के अनुकूल शासन है।
मेरे हिसाब से ई गवर्नेंस, इजी गवर्नेंस, इफेक्टिव गवर्नेंस, इकोनॉमिकल गवर्नेंस, एनवायरमेंट फ्रेंडली गवर्नेंस, ये बहुत ही सरल है, बहुत ही उपयोगी है और आज के समय में जब समय की कठिनाई है तो कम समय में करने वाला काम इससे।
जेएएम ट्रिनिटी जनधन आधार और मोबाइल भारत के विकसित डिजिटल माहौल का मुख्य आधार बन गया है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी जेएएम नेटवर्क का इस्तेमाल करके सरकारी लाभ, सब्सिडी और भुगतान सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजता है। वहीं ईकेवाईसी आधार आधारित सत्यापन को तुरंत पेपरलेस और धोखाधड़ी मुक्त बनाता है, जिससे सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित शासन सुनिश्चित होता है। सरकारी ई मार्केट प्लेस जीईएम ने खरीद परोख्त में क्रांति ला दी है, साथ ही लाखों छोटे व्यवसायियों, महिला उद्यमियों और स्टार्टअप को आगे बढ़ाने में मदद की है। उमंग ऐप सरकारी सेवाओं तक पहुंचने के लिए एक ही प्लेटफॉर्म के रूप में काम करता है। डिजी लॉकर नागरिकों को डिजिटल दस्तावेज स्टोर करने की सुविधा देता है। भाषिनी भाषाओं के बीच संचार को सक्षम बनाता है और आईगोट कर्मयोगी एक प्रमुख डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म के रूप में उभरा है। जम्मू कश्मीर के बारामूला के सैयद खालिद ने अपना अनुभव साझा करते हुए कहा कि उमंग ऐप ने उन्हें अपना काम आसानी से और जल्दी पूरा करने में मदद की है।
मेरा नाम सैयद खालिद है, मैं डिस्ट्रिक्ट बारामूला जे एंड के से बिलोंग करता हूँ। मैंने उमंग ऐप के बारे में अपने दोस्तों से सुना था और मैंने ही डाउनलोड की। उमंग ऐप मुझे बहुत ही फायदेमंद लगी। उमंग ऐप से मैं घर बैठे बैठे अपने काम आसानी से कर पाता हूँ।
टेक्नोलॉजी अब सरकार और जनता के बीच एक सेतु बन गई है। यह प्लेटफॉर्म मिलकर ये सुनिश्चित करते हैं कि शासन प्रक्रिया काउंटरों और गलियारों तक सीमित न रहे, बल्कि ये डिजिटल समावेशी और पारदर्शी तरीके से भारत के हर नागरिक तक। गृहमंत्री अमित शाह ने आज पश्चिम बंगाल में परिवर्तन का आह्वान किया। श्री शाह ने कोलकाता के संतोष मित्रा स्क्वायर स्थित दुर्गा पूजा पंडाल का दौरा किया, जहां लेजर शो के माध्यम से ऑपरेशन सिंदूर का प्रदर्शन किया गया। उन्होंने पश्चिम बंगाल के लोगों से एक सुरक्षित, शांतिपूर्ण और समृद्ध राज्य बनाने की दिशा में काम करने का आग्रह किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो इसराइल को वेस्ट बैंक पर कब्जा नहीं करने देगा। श्री ट्रंप ने यह बयान इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के आज न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा में संबोधित के लिए अमेरिका आने से पहले दिया। विभिन्न देशों द्वारा फिलिस्तीन को औपचारिक रूप से मान्यता देने के बाद संयुक्त राष्ट्र महासभा के हाल के सम्मेलन में तनाव फिर पड़ गया है। इटली के उप प्रधानमंत्री एंटोनियो तनाजी ने भी भारत और यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौते को शीघ्र संपन्न करने के लिए इटली के समर्थन की पुष्टि की। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के साथ बैठक के बाद श्री तजानी ने कहा है कि इटली और भारत के बीच रणनीतिक साझेदारी है। अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधार देश की अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को सरल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अब लोग जीएसटी सुधारों का लाभ उठा सकते हैं, जो इस महीने की 22 तारीख से लागू हो गई है। विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं पर कर की दर घटने से नागरिकों को काफी राहत मिल रही है। एक रिपोर्ट।
परिवारों और छात्रों को बड़ी राहत देते हुए सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों पर जीएसटी की दरें कम कर दी हैं। अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों के तहत नोटबुक, ग्राफ बुक, शार्पनर, पेंसिल जैसी स्टेशनरी वस्तुओं को पूरी तरह से करमुक्त कर दिया गया है। इस क्षेत्र में कर में कटौती से छात्रों पर आर्थिक बोझ कम होगा, जिससे ये उत्पाद और भी किफायती हो जाएंगे। 2500 रूपये से कम मूल्य के जूतों पर भी इसी तरह की छूट दी गई है। कर दरों में इस महत्वपूर्ण कटौती से न केवल उत्पाद आम आदमी के लिए किफायती बनेंगे, बल्कि उत्पादन उद्योग और देश की अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ ही सरकार ने लकड़ी, पत्थर और धातु से बनी मूर्तियों पर भी कर की दर घटाकर 5% कर दी है, जो पहले 12% की दर का हिस्सा थी। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए दुकानदार सुधीर ने सरकार के इस फैसले की सराहना की और आभार व्यक्त किया।
सरकार ने जीएसटी कम कर दिया है, उससे स्टेशनरी की चीजें सस्ते हो गए हैं, इससे बच्चों की पढ़ाई का खर्चा बहुत कम हो गया है और अब जब ये सारी चीजें सस्ती हो गई हैं तो लोग भी इनको ज्यादा से ज्यादा खरीद रहे हैं और हम दुकानदारों का भी फायदा हो रहा है। मैं सरकार का जीएसटी कम करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस महीने की 21 तारीख को नागरिकों से स्वदेशी उत्पादों को अपनाने, घरेलू उद्योगों, छोटे निर्माताओं, स्थानीय कारीगरों और एमएसएमई का समर्थन करने का आग्रह किया है। शिवांग के साथ सौम्य शरण, आकाश।
दुबई में एशिया कप क्रिकेट के सुपर फोर के अंतिम मैच में आज शाम भारत का सामना श्रीलंका से होगा। यह मैच रात 8 बजे से खेला जाएगा। कल पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 11 रन से हरा दिया। फाइनल में रविवार को भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। घरेलू शेयर बाजार का सेंसेक्स 653 अंक गिरकर 80,511 पर और निफ्टी 206 अंक गिरकर 24,684 पर कारोबार कर रहा था। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।